ओम शांति। हमारे समक्ष आदरणीय गीता बहन जी उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय गीता दीदी जी ने ये ईश्वरीय ज्ञान गुजरात से प्राप्त किया और 15 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। पिछले 38 वर्षों से बाबा की सेवाओं में आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने काउंसलिंग और हेल्थ साइकोलॉजी में MSc किया है और अमेरिका की साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया है। आपको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, वुमन अचीवर्स अवार्ड और WHO द्वारा कोविड सेवा सम्मान सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आप अब तक लगभग 50,000 से भी अधिक ग्रामीणों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, 1,000 से भी अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन और 125 से भी अधिक हेल्थ कैंप आयोजित कर चुके हैं। साथ साथ इन आत्माओं को शिव बाबा से मिलवा चुके हैं, उनका परिचय, शिव बाबा का परिचय सब तक आपने पहुंचाया है। आपको कई स्थानों पर एज ए स्पीकर बुलाया गया और आपने प्यारे शिव बाबा का सुंदर परिचय उन सबको दिया, जिसमें 21 जून 2017 को आपने महाराष्ट्र विधानसभा और गवर्नर हाउस में इंटरनेशनल योग दिवस पर भी व्याख्यान दिया है। आप विशेष युवाओं के लिए, महिलाएं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जीवन कौशल, सकारात्मक व्यक्तित्व विकास, तनाव प्रबंधन और राजयोग जैसे विषयों पर 1,000 से भी अधिक सेमिनार और वर्कशॉप कर चुके हैं। वर्तमान समय आप भीनमाल राजस्थान में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे आप विशेष बाबा के अनेक विशेषताओं से सुसज्जित रतन हैं और आज हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि एक बहुत सुंदर विषय पर हम सबको क्लास कराने आदरणीय दीदी जी उपस्थित हुए हैं। तो पुनः दीदी का हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत सुंदर आज का आपका क्लास का विषय है यज्ञ सेवा का सुनहरा अवसर। तो आइए सुनते हैं आदरणीय गीता दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाशिवरात्रि के मौके पर हम सभी बाप दादा मिलन में, बेहद के घर में, बेहद डायमंड हॉल में और सभी लगभग सेवा के लिए आए हुए भाई बहने आज तो है। ईश्वरीय पढ़ाई के हम सभी विद्यार्थी हैं और पढ़ाई के अंदर के चारों विषय में ईश्वरीय सेवा, जिसको हम यज्ञ सेवा कहते हैं, बेहद की सेवा कहते हैं, वो भी हमारा चौथा विषय है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारा पूरा सिलेबस है और हर एक विद्यार्थी को ये पता होता है कि उसे अपने सभी विषयों में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना जरूरी होता है, तभी वो उस क्लास से आगे की क्लास में ट्रांसफर हो सकता है, उसकी कक्षा बढ़ सकती है। तो हम सभी बाबा के बच्चे ईश्वरीय ज्ञान मुरली को रोज सुनते हैं, अनेक महारथियों के मनन चिंतन की धारणायुक्त क्लासेस भी सुनते हैं, अपने मन में भी मनन चिंतन करते हैं। ज्ञान का विषय हमारा सबसे प्रिय विषय होता है और योग तो हमारे जीवन का आधार ही है। तो सुबह उठ के ही पहला काम कौन सा है ब्राह्मणों का? बाबा से गुड मॉर्निंग करना, बाबा से मीठी बातें करना। इसी प्रकार जीवन धारणाओं के आधार पे हमने चलाना शुरू किया, निश्चय किया कि यही मूल्य, यही मर्यादाएं, यही नियम, ये हम ब्राह्मणों के जीवन का आधार है, शोभा है। तो धारणाओं ने भी हमारे जीवन को शोभायमान किया हुआ है, तभी आज हम बाबा के घर में यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन आज का विषय है बेहद की यज्ञ की क्यों सेवा को बहुत ऊंचा परम श्रेष्ठ भाव कहा गया है। सेवा भाव ऐसा शब्द यूज होता है क्योंकि सेवा मन के भावों से ही संभव है, इसलिए सेवा भाव कहा जाता है। किसी भी प्रकार की सेवा करें परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? भाव चाहिए। सेवा अर्थात किसी की मदद करना, सहयोग करना, किसी के काम आना, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए अपने प्राप्त खजानों को, अपनी प्राप्त कौशल को इस्तेमाल करना, चाहे वो मन की संकल्पों की शक्ति है जिसको हम मन से सेवा कहते हैं, सर्व का कल्याण हो, भक्ति में भी प्रार्थना करते हैं तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बच्चों को भी प्रेयर में सिखाया जाता है कि जब भी ईश्वर को याद किया जाए तो केवल स्वयं के लिए कुछ न मांगो लेकिन सर्व का भला हो। तो ये जो संकल्प है यही बाबा भी हमें कहते हैं कि मन से सर्व को सुख देना, सर्व के कल्याण की भावना रखना, ये भी सेवा है। वाणी से भी जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, जो कुछ हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उस अनुभव को अपनी वाणी से औरों को बताना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। आज हम ज्ञान सुनाते हैं तो केवल वर्णन करना ये बात नहीं है, लेकिन सेवा का भाव जब होता है तो दिल से यह निकलता है कि मुझे ये मिला, आप भी करके देखिए। और जो आज हम यहां पर बड़े यज्ञ में, ये बाबा का बेहद का यज्ञ है, यज्ञ भूमि की भी बड़ी महिमा है। तो इस यज्ञ भूमि पर हम यज्ञ सेवा के लिए आते हैं। ये वो यज्ञ है जिसे स्वयं परमात्मा ने रचा, जिसे ब्रह्मा और सरस्वती ने, आदि पिता ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती ने अपने हाथों से सींचा। इसलिए यज्ञ की भूमि पर पहुंचने से भी भक्त लोग नमन करते हैं, कहते हैं कि हम इस भूमि पर आए जिस भूमि पर अनेक आत्माएं आकर पतित से पावन बन रही है, भटकती हुई रूहों को जिस स्थान से राह मिल रही है, ये वो भूमि है। इस भूमि पर तो पहुंचते भी वही है जिनका भाग्य खुलता है। तो आप सभी का खुला ना? बहुत से भाई बहने होंगे जिन्होंने जिस दिन से बाप दादा मिलन का प्रोग्राम आया होगा, उस दिन से कहा होगा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं होती है जिनको बड़े कहते हैं कि आपको तो सेवा में चलना होगा, और कैसे भी उनको छुट्टी मिल जाती है और वो पहुंच जाते हैं। तो वो कौन होते हैं? जो इस पावन भूमि पर पहुंचने का जिनका भाग्य होता है, ऐसी पावन यज्ञ की किसी भी प्रकार की सेवा ये उत्तम ब्राह्मणों को ही प्राप्त होती है। तो जब हम सेवा के लिए सिलेक्ट हुए, सेवाधारी के रूप में पहुंचे, तो एक सर्टिफिकेट तो मिल गया कि हम उत्तम ब्राह्मण बन गए हैं। बन गए ना? बिना उसके भगवान इस धरा पर हमें आह्वान नहीं करता, नहीं ले आता। तो सेवा का भाव भक्ति मार्ग में अलग होता है, ज्ञान मार्ग में सेवा का स्वरूप अलग है। भक्ति में कहते हैं जिसने भगवान को प्रतिदिन सेवा पूजा की, वहां मूर्तियों की करते आए, करते थे ना भाई, मूर्तियों को दूध में लहलाना, पंचामृत से नहलाना, पुष्प अर्पित करना, श्लोक आदि आरती आदि रोज करना, मंदिर में स्थापन करना, मंदिर बनाना, ये सब हम भक्ति मार्ग में उत्तम कर्म समझकर करते आए। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो पता चलता है कि अरे, अब मंदिर बनाने का नहीं, अब मंदिर में विराजमान देवताओं के बनाने का टाइम चल रहा है, देवताओं को तैयार होने का टाइम चल रहा है, पुनः मानव को देव बनने का ये समय चल रहा है। तो अब सेवा कौन सी की जाए? कैसे हर मानव दैवी गुणों से संपन्न देवता बन जाएं, उसके लिए बाबा ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय खोला है, जगह जगह विद्यालय की ब्रांचेस खोली है, छोटे छोटे गांव में भी पाठशाला खोली है। ये ईश्वरीय सेवा का पूरा जो सिस्टम है ये क्यों है? मानव जगे देव बन जाएं। तो सोचिए इस ईश्वरीय कार्य में जो भी तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, अपनी किसी भी विशेषता से परमात्म सहयोगी बना, अर्थात उसने क्या किया? मानव को देव बनाने में अपना सहयोग दिया। मैं कई बार देखती हूं मंदिरों की प्रतिष्ठा होती है, नए नए मंदिर हर साल बनते हैं, आप देखेंगे इतनी श्रद्धा, इतना दान पुण्य करके, और बड़ी लोगों को गर्व होता है कि हमने अपने आराध्य देव का मंदिर बनाया, हमने महादेव का मंदिर बनाया, हमने अपने कुल देवता का मंदिर बनाया या कुल देवी की प्रतिष्ठा की। बड़े खुश होते हैं, चढ़ावे बोलते हैं, और जिसका सबसे ऊपर का चढ़ावा होता है वो सबसे ज्यादा गर्व और भाग्य महसूस करता है कि यह कार्य मुझे मिला, उसका नाम अमर हो जाता है, ऐसा दुनिया कहती है। अब सोचो जो बने हुए देवता जिनके बारे में पता भी नहीं है, न पूरी कहानी पता है, न जीवन गाथा पता है, न उनका समय काल पता है कि वो देवता कब थे, उनकी मूर्तियों की स्थापना करने को भी परम भाग्य समझते हैं और करोड़ों रुपया दान करके खुश होते हैं कि हमारे हाथों से एक मंदिर की स्थापना हो गई। हम जो यहां एक एक बाबा के बच्चे यज्ञ की सेवा करते हैं, चाहे कोई भोजन बनाने की सेवा करता है, चाहे कोई सफाई की सेवा में सहयोगी है, चाहे कोई बर्तन की सेवा करता है, चाहे कोई गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी चलाता है, स्टेशन पर रिसीव करता है, भोजन परोसता है, कोई भी सेवा है, लेकिन इस सेवा के पीछे का भाव क्लियर होना चाहिए कि ये मानव को देव बनाने की सेवा हो रही है। मंदिर बनाने वाले तो जड़ मूर्ति बिठाते हैं, यहां चेतन में देवताएं तैयार हो रहे हैं, तो कितना पुण्य है, कितना पुण्य है इस भूमि पर कोई भी प्रकार की सेवा करने का। किसी एक सेवा से स्वर्ग नहीं बन रहा है, सभी प्रकार की सेवा, सभी प्रकार का सहयोग स्वर्ग बनाने में काम आ रहा है। इसलिए जब भी सेवा का न्योता मिलता है, सेवा का चांस मिलता है, तो समझ लो भाग्य विधाता कलम मुझे हाथ में दे रहा है कि हे वत्स, इस कलम को पकड़ ले और अगले कुछ दिनों के लिए अपने तकदीर में जो लिखना चाहे वो तू खुद लिख ले। कहते हैं ना कि खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है, भगवान खुद पूछे बता तेरी तकदीर में, तेरे भाग्य में क्या लिखूं मैं। यहां उससे भी एक कदम आगे परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म सेवा कर्म अर्थात आपके हाथ में आपका भाग्य लिखने की कलम खुद भाग्य विधाता ने दे दी है। अभी आपके ऊपर है कि उस कलम से उस श्रेष्ठ कर्म को करके जो भी मुझे मिला है किस विधि से मैं करूं, कितना करूं, कितना दिल से करूं कि वो मेरी कलम आगे से आगे बढ़ती ही जाए। तो हम सबको सेवा रूपी वो कलम मिली है, भक्ति मार्ग में कथा आती है कि श्री कृष्ण सखा के रूप में द्रौपदी के साथ बचपन में खेल पाल में थे, तभी अचानक उनके हाथ में कुछ लग गया तो खून निकलने लगा। तो अन्य तो सभी ने सोचा कि कहीं से पट्टी ला दी जाए, कहीं से वैद्य बुला लिया जाए, लेकिन द्रौपदी का उस सखा रूप में इतना प्यार था, कहा कि मैं देख नहीं सकती कि मेरे इतने परम सखा को खून बह रहा हो। उसने तुरंत ही अपने महंगे वाले चीर को फाड़कर और उस हाथ में पट्टी बांध दी। समय पर सहयोग, बाकी की कहानी तो सबको पता है कि उसी द्रौपदी को जब राजसभा में अपने उसी चीर को बचाने की जरूरत पड़ी तो उस परमात्मा को आकर के उस एक एक धागे का अनेक गुणा करके मदद के लिए खुद हाजिर होना ही पड़ा। ये है समय पर सहयोग करने का फल। कभी कभी हम कहते हैं सेवा तो करेंगे पर अभी मुझे समय नहीं है, जब मुझे समय होगा तब मैं बताऊंगा कि मैं सेवा करूं क्या, मैं मधुबन सेवा में जाऊं क्या, या कोई सेवा हो तो बताओ, वो अलग बात है कि जब मुझे टाइम है और मैं कहूं कि मैं सेवा करूं क्या, मेरी छुट्टी का दिन है मैं जाऊं क्या मधुबन में। लेकिन एक बाबा कहे यज्ञ को जरूरत है तब मैं अपने 10 काम छोड़कर पहले बाबा की सेवा, तो वो समय पर जो मैं खड़ी रही, समय पर जो मैं सेवा में सहयोगी बनती हूं, उसका कई गुणा अधिक फल मिलता है। तो जो जो भी अपने लौकिक से चाहे बंधन होंगे, चाहे घर में कोई प्रसंग होंगे, छुट्टी नहीं मिल रही होगी, पगार भी कट रही होगी, पर सेवा का बुलावा आया है, चल दिए तो वो परम सखा कितना प्रसन्न होगा। एक जन्म की साधारण मनुष्यों की खुशी, कुछ धन कुछ प्रसंग आपने मिस भी कर दिए लौकिक के, लेकिन जो सेवा की ना, तो एक जन्म का चाहे एक प्रसंग मिस हुआ, लेकिन अनेक जन्मों का अनेक गुणा सुनहरा भाग्य आपने अपना लिख लिया। जब ये संकल्प होगा तब सेवा में बहुत बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तभी कहते सेवा भाव, सेवा के साथ ये भाव बड़ा आवश्यक है कि मैं किसके यज्ञ की सेवा कर रही हूं, ये मुझे कौन सा तो भाग्य देने वाला अवसर आया है। अगर ये याद रहे तो जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे एक सेवा नहीं करो, तीन सेवाएं साथ साथ करो, मन से भी श्रेष्ठ संकल्पों में रहो, वाणी से भी, हर किसी के साथ। आपको कोई भी ड्यूटी मिली है लेकिन जब आपका व्यवहार मधुर होता है, आप अच्छे तरीके से सबके साथ सेवा करते हुए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो वो आपकी वाणी की मधुरता भी आपके एक्स्ट्रा नंबर जोड़ देती है। और फिर कर्म तो मिला ही है, हम तो अभी इतनी सुख सुविधा के समय पर सेवाएं कर रहे हैं। एक समय था जब छोटा सा यज्ञ का स्वरूप था, माउंट आबू में जब अभी आए थे, थोड़े से भाई बहने थे, धन भी सीमित, साधन भी सीमित, ऐसे में जब सेवाएं की है, उन कहानियों को कभी सुनिए। हाथों से जंगल से लकड़ियां काट के समर्पित भाई बहने लाते थे, उन्हीं लकड़ियों से चूल्हा जलता था, खाना पकाते हुए उन लकड़ियों के धुएं से आंखों से नदियां भी बहती थी। माउंट आबू की ठंड में सुबह 4 बजे बॉयलर में उन्हीं लकड़ियों से पानी गरम कर करके सबको देने की भी ड्यूटी करने वाले थे। आज तो हम बहुत अच्छे सुख साधन यज्ञ में देख रहे हैं, तो यज्ञ सेवा बहुत सरल है, लेकिन तब भी जिन्होंने सेवाएं की, खुद बहने भी पहरे पर रात भर खड़ी रहती थी। बाबा ने बहनों को पहरे की ड्यूटी से कभी मुक्त नहीं किया कि भाई ड्यूटी करेंगे, तो क्या करते थे, उनको भी भाइयों की ड्रेस पहनाते थे और बहनों को भी बाबा स्वमान देते थे। कभी कभी लगता है ना, ये काम तो मैंने कभी घर में किया ही नहीं है, तो बाबा कहते थे बच्चे पता है तुम कौन हो, तुम तो चतुर्भुज हो, तुमने तो नर और नारी दोनों प्रकार के पार्ट तो प्ले किए हैं ना, तो अभी तुम इस भान से परे हो जाओ, रात भर ठंड में गेट पर ड्यूटी करने, मैं चतुर्भुज हूं। इस स्वमान से बहने भी खड़ी रहती थी। बहनों ने गाड़ी के नीचे जाकर और गाड़ी के स्क्रू बोल्ट को रिपेयर करने के काम भी किए, और जिन बहनों ने घर में फूलों की तरह पली थी दादियां, बाबा ने उनके देह अभिमान को टेस्ट करने के लिए जूते को सुई धागे से जोड़ने तक की भी सेवा सिखाई और कराई। और तब हम देखते हैं कि उन दादियों की, उन महारथी पुराने भाई बहनों की तपस्या ने आज यज्ञ को ये सुख साधन सुविधाएं प्रदान की। तो पहले त्याग हुआ, फिर आज भाग्य दिखाई दे रहा है। वरना तो सबको पता है कि एक बेगरी पार्ट भी आया था जब यज्ञ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जिन्होंने तब भी सेवा प्रभु प्यार को अपना जीवन का आधार बना के रखा, उनकी गुप्त सेवा से आज ये यज्ञ खड़ा है, उनका कितना न भाग्य जमा हुआ है। आज हम यज्ञ में मधुबन भूमि पर आते हैं तो कभी कभी छोटी छोटी बातों में हमारी स्थिति कभी कभी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, हो जाती है। घर में तो मुझे दो बेड वाले कमरे में ही सोने की आदत है, यहां तो मुझे 8 बेड वाला कमरा मिला, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, और नींद ही नहीं आएगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कभी कभी संकल्प आते हैं, कभी कभी सेवा में रहते हैं, समय पे भंडारे में नहीं पहुंचते, भोजन भी ठंडा हो जाता है। मामूली सी बात है, कोई बहुत बड़ा त्याग तो अब रहा ही नहीं है, लेकिन तब भी कई भाई बहने सेवा में आने से पहले सोचते हैं कि बहन जी हम कैसे सेवा कर पाएंगे, हमें वो सब तरीके से रहने की आदत नहीं है। ये संकल्प क्या कर रहा है, उनके भाग्य के आगे लकीर खींच रहा है, और आप सब उस लकीर को पार करके आ गए तो आपका भाग्य ही भाग्य बन रहा है। तो सभी संकल्पों का त्याग कर दीजिए। अरे ये तो वो संगम का स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उस संगम में जाके देखो क्या सुविधा है। आजकल तो रोज देख रहे हो ना, प्रयागराज में संगम पे कितनी भीड़ पहुंच रही है, कितना कष्ट उठा रहे हैं, क्या भोजन मिल रहा है, कहाँ रुकने को मिल रहा है, कोई सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी पता भी नहीं है, लेकिन दौड़े जा रहे हैं लोग, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगानी है, और हम कहां पहुंचे हैं, सच्चे सच्चे संगम पे पहुंचे हैं, कुंभ के मेले में पहुंचे हैं। पहुंचे हैं कि नहीं भाई, जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, कुंभ के मेले में आए हो कि नहीं। और वो भी कहते हैं जिसने अंतिम स्नान किया ना, उसने सब कुछ किया। तो जो शिवरात्रि बाबा का शिव जयंती मनाने आए, तो उसने तो कितना बड़ा स्नान कर लिया। तो ऐसे में अगर छोटी मोटी कोई दिक्कतें हुई, कहीं लाइन में खड़ा रहना पड़ा, कभी भोजन थोड़ा सा ठंडा हो गया, रहने को नहाने में कभी कुछ, वैसे बाबा के घर में हम बहुत सुख पाते हैं, फिर भी अगर कहीं कोई घर से, घर के हिसाब से हमें कमी भी लगे, तो इस त्याग को तो कोई त्याग भी नहीं कहेंगे, ये तो आनंद ही आनंद है। तो जिसे यज्ञ सेवा की कदर होगी, उसे ये त्याग, ये तकलीफ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अरे जब देश को आजादी मिली, दो टुकड़े हुए भारत, और भारत का एक पाकिस्तान हिस्सा बन गया, उससे पहले लंबे समय तक देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए स्वतंत्र संग्राम चला। उस स्वतंत्र संग्राम में कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितनों को लाठियां खानी पड़ी, बेरहमी से पीटा गया, लेकिन उनका लक्ष्य था देश को गुलामी से छुड़ाना है। और उन स्वतंत्र वीरों की आज गाथाएं गाई जा रही है, आज भी उनको अमर भव कहते हैं, आज भी उनके कई स्तंभों पे नाम लिखे जा रहे हैं, उनको पेंशन सरकार ने बांधी। सोचो, एक देश को एक विदेशी ताकत से छुड़ाने में जिसने थोड़ी भी मेहनत की, उनको स्वतंत्र वीर नाम मिला, उनको अमर सेनानी कहा गया, तो हम तो कौन सी सेवा कर रहे हैं? पूरी मानवता को, पूरे विश्व को रावण की 2500 साल पुरानी गुलामी से छुड़ाने में लगे हुए हैं। तो इस सेवा का फ्यूचर, भविष्य क्या होगा, जरा विचार कीजिए। भगवान कितना प्रसन्न होंगे कि वह मेरे इतने बड़े अभियान में ये सब मेरी भुजाओं ने मुझे साथ दिया, सहयोग किया, समर्पण किया, त्याग किया, ये सब कौन नोट कर रहा है? आपकी सेवा किसी और ने देखी या न देखी, किसी और ने काउंट किया या नहीं किया, सामने सामने किसी ने प्रशंसा की या नहीं की, तो ये मत सोचना कि मैंने सेवा की पर मेरी कोई कदर हुई कि नहीं हुई। जिसको फल देना है वो एक एक चीज नोट कर रहा है, उसका कैमरा 24 घंटा आपके ऊपर लगा हुआ है। इसलिए निश्चिंत रहिए, आपकी दिल से सेवा करना, ईमानदारी से सेवा करना, नींद आराम को छोड़ करके भी सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये सब भगवान स्वयं नोट कर रहा है। और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो भक्ति में भी कहते हैं वो नंगे पैर दौड़ के आता है, अपने भक्तों को गोद में उठा लेता है। तो जब वो भक्तों को इतना फल देता है तो हम तो उसके लाडले बच्चे हैं। इसलिए सेवा का फल अनेक गुना है। सेवा तो निमित्त मात्र है, सेवा के बहाने भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आके रहें, मेरे घर में थोड़े दिन आके विश्राम करें, अपनी गृहस्थी की दुनियावी झंझटों को भूलकर इस तपस्या भूमि के पवित्र वाइब्रेशन प्राप्त करें। इसके लिए बाबा हमें बुलाता है। तो सभी प्यार से सेवा कर रहे हैं ना? धन की सेवा जो बाबा के यज्ञ में हम सहयोग के रूप में करते हैं, कभी भी गिनती करके मत करो, या कभी साथ में आए हुए को मत पूछो तुमने कितना दिया, ये मत सोचो कभी, क्योंकि धन का भी बड़ा हिसाब है। यही वो स्थान है जहां पे धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग एक तो होता है, ये ईश्वरीय बैंक है। इस बैंक में जब हम धन की सेवा के नाम से सहयोग करते हैं, तो दुनिया की कोई भी बैंक देख लो, किसी भी देश की बैंक देख लो, सभी बैंक से ऊपर, दो गुना चार गुना नहीं, पर भगवान की गारंटी है कितना गुना, सौ गुणा हमारे धन की एक एक पाई का इसी बैंक से हमें रिटर्न मिलता है। फिर भी हम सोचेंगे तो ये तो हम अपने भाग्य को बनाने में सोच रहे हैं। भगवान का यज्ञ सुखकारी है, परम हितकारी है, और इस हितकारी कल्याणकारी इतने बड़े यज्ञ में हमारी जो भी आहुति पड़ जाए वो जन्मों जन्म के लिए आत्मा को पावन बना देती है। भक्ति में कहते हैं कि नरसी भगत से भगवान ने एक टके का दान करवाया था। सुनते हो ना माताएं कहानी, राजस्थान में तो विशेष सबने सुनी होती, नानी बाईरो मायरो, सुना है? सुना है किस किस ने? सबको पता है। नरसी भगत से भगवान ने पीछे पड़ के कि एक टका तो तुम्हारा दान लूंगा ही, और बदले में क्या मिला था? जब अपनी दोईती के शादी में कहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ससुराल वालों ने मांगी, लेकिन चूंकि ये तो खाली था, ये तो भगत बन गया था, ये तो खाली हाथ चला गया था, लेकिन जितना ससुराल वालों ने मांगा था उससे चार गुना भगवान ने स्वयं आकर भर दिया। लिया क्या था? एक टका। और भरा कितना? तो कहते 56 करोड़ का भात भरा। भात बोलते ना, ननिहाल से जो बेटी को मिलता है ससुराल में उसे भात कहते, मायरा कहते, कुछ अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते होंगे। तो 56 करोड़ का भात भगवान को आके भरना पड़ा। तो भगवान के यज्ञ में देना देना नहीं है, लेकिन ये तो जन्म जन्म के लिए जमा करके लेने की गारंटी का कार्ड प्राप्त करना है। तो हम सब ने वो गारंटी कार्ड प्राप्त कर लिया है कि हम किसी भी जन्म में किसी भी कार्य के समय किसी भी संबंध को निभाने में किसी भी समस्या के समय हम कभी तकलीफ में रहेंगे नहीं, हमारा तो कार्य हो ही जाएगा, क्योंकि हमने भगवान के कार्य में जब जरूरत थी, जब कहा गया था, तो अपना जमा किया है। इसलिए खुला दिल, बड़ी दिल, उसका भी बड़ा महत्व है। सेवा निस्वार्थ भी हो और सेवा गुप्त भी हो। सेवा करके कभी भी ये न लगे कि कभी थोड़ा सा पता तो चले मैंने कितनी सेवा की, किसने ज्यादा की किसने कम की, ये साबित नहीं करना है। जितना गुप्त है उतना ही अनेक गुणा बढ़ता है। जिसको थोड़ी सी भी नाम मान शान की इच्छा हो गई सेवा के पश्चात, समझो उसने, बाबा कहते हैं, कच्चा फल खाने की इच्छा रख ली। अब आप बताइए, कच्चा फल ज्यादा फायदा करता है, रस वाला होता है, मीठा होता है, या पका हुआ? बताइए। सभी जानते हैं पके हुए फल में मधुरता भी होती है, रस भी होता है, और अधिक फायदा करता है। तो जितना मेरी सेवा गुप्त रहे उतना ही अच्छा। कभी भी सेवा करके किसी प्रकार के फल की कि मैं बहुत सेवा करता हूं तो मुझे आगे जगह मिले, मैं बहुत सेवा करता हूं तो मुझे अच्छा रूम मिले, मुझे थोड़ा मान मिले, मुझे थोड़ा स्टेज पर जाने को मिले, कम से कम कैंडल लाइटिंग में बुला ले, कम से कम कहीं ना कहीं मेरा नाम हो जाए। अरे ज्ञानामृत में एक आध फोटो तो मेरी छप जाए, होता है ना। परंतु जितना गुप्त रहेंगे उतना वो अनेक गुणा बढ़ने के लिए जमा रहेगा और वो समय आने पर अपने आप ही मेरे ही अकाउंट में रहेगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सेवा मेरी हो और किसी और के अकाउंट में जमा हो जाए, ये तो प्रावधान ही नहीं है। दुनिया की बैंक में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, किसका पैसा किसके खाते में चला जाता है, लेकिन सेवा का फल कभी किसी के पास नहीं जाता। मेरा किया हुआ मेरे ही खाते में और अनेक गुना बढ़ता है। इसलिए भी बड़े दिल से सेवा करनी है। और ये संगम युग की सेवा, परमात्मा का परिचय देने की सेवा या परमात्मा के घर की सेवा, क्या 5000 वर्ष में फिर कभी मिलेगी? मिलेगी बताइए। 5000 साल में पूरे कल्प में केवल यही जन्म, और इस जन्म में भी हम तो ज्ञान में ही कब आए। बाबा तो 1936 से धरती पर अपना कार्य कर रहे हैं, हमें कितना सौभाग्य मिला कुछ एक सालों का, और आगे भी कितना समय बचा है, कितना समय बचा होगा भाई, कुछ भरोसा नहीं है। सेवाएं भी कितना समय चलेगी, घर से निकलकर हम सेवाओं में कितना समय जा पाएंगे, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। पल पल विश्व पटल पर दृश्य बदल रहे हैं, सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है। अब साधनों से सेवा हो रही है, डिजिटल सेवाएं हो रही है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आपको पता होगा। जैसे एक व्यक्ति बोलता है वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई बोल सकता है, पूरा ज्ञान सुना सकता है। तो कल को तो ये एआई से ही सेवा होने लग जाएगी, हमारे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा भाग्य बनेगा ही नहीं। आज जितना बन रहा है, जितना मिला है, उतना क्या करना है, ले लो। दुनिया में कहते राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये सेवा से भाग्य बनाने की बेला है, इस बेला में पल पल को यूज कर लो। ऐसा नहीं आए हैं सेवा में और अमृत वेले भी सोए रहें, इधर उधर बातों में लगे रहें, या सोचें कि चलो थोड़ा आसपास घूम के आ जाएं, मार्केट में 2-4 घंटा घूम लें। आए थे किस लिए, क्या कहते भक्ति में, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कुछ लोग जाते हैं भजन करने, लेकिन वहां भी कुछ बातें हो रही होती तो बातों में मजा आता है, लेकिन भजन नहीं सुनते। तो हम भी जितने दिन बाबा के यज्ञ में आए हैं, ये सुनहरा अवसर इधर उधर बातों में न चला जाए, आलस अलबेलेपन में न चला जाए, मार्केट में देखने में न चला जाए, या कोई सोचे मैं इधर घूम के आ जाऊं उधर घूम के आ जाऊं। अरे 84 जन्म घूमे ही तो है, भटके ही तो है, अब तो ठिकाना मिला है, अभी और कहां भटकना है, अब और कहां जाना है बताओ। बाबा के घर से कोई सुंदर स्थान है क्या, है क्या बताओ। तो कभी ये नहीं सोचना बाबा के घर आए तो कहीं घूम के आए, कुछ देख के आए। तो हम हाथ में आए हुए भाग्य को भी कभी कभी इन इच्छाओं की वजह से क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं। तो बहुत समझदार बने। भाग्य बनाने की बेला में कोई भी माया का रूप, आकर्षण का रूप, बातों के अंदर हमारा ध्यान न जाए। कभी कभी सेवाधारी आपस में मिलते हैं ना, तो ऐसे तो सेवाओं की बातें होती, आपके यहाँ कैसी सेवा, हमारे यहाँ कैसी सेवा, आपके यहाँ क्या क्या होता, हमारे यहाँ क्या क्या होता। फिर सेवा की बातें करते करते बाबा ने एक मुरली में कहा था, सेवा समाचार की लेन देन करते करते सेवाधारियों की अवस्था की लेन देन करने लग जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ ऐसा होता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, और ये भी हमारा चिंतन कहाँ चला गया, व्यर्थ में चला गया। हम यहाँ व्यर्थ देखने नहीं आए हैं, व्यर्थ सुनने नहीं आए हैं। इसलिए कहते गंगा में जब डुबकी लगानी होती है ना, पता है कैसे लगाते हैं? आंख, नाक, कान संभाल के लगाई जाती है, नहीं तो कहीं डुबकी लगाते लगाते उल्टा बीमार हो जाए कोई, ये भी संभाल चाहिए। तो हम सच्चे सच्चे संगम पर डुबकी लगाकर पावनता का अनुभव करने आए हैं, कहीं आंखों से कुछ व्यर्थ देख लेंगे, कहीं कानों से व्यर्थ बातें किसकी सुन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, गंगा स्नान के बदले कुछ एक्स्ट्रा पाप का बोझ भी चढ़ा के यहां से चले जाएंगे। ये भी बड़ी सावधानी रखनी है। यही वो जगह है जहां पर सबके मैले कपड़े साफ होते हैं। इस भूमि पर अब तक लाखों आत्माओं का जीवन बदला है, तो मैं भी अपने जीवन को चमकाने के लिए, अपनी आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए यहां आत्मा आई हूं। जरा सी भी चमक फीकी नहीं होनी चाहिए। ये अटेंशन, अपनी चेकिंग हम सब जरूर करेंगे, तो ये जो 5, 6, 7, 10 दिन का हमें मौका मिलता है, ये बहुत 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 हमारा सफल हो सकता है। क्योंकि सावधानी, समझ, वही जीवन को सफल बनाती है। बीत जाने के बाद किसी को समझ भी मिले, किसी को विवेक भी जगे, तो बीतने के बाद तो ये अवसर फिर नहीं आता। बहुत से भाई बहने तो साल में एक ही बार सेवा में आते हैं, कई तो एक ही बार मधुबन पहुंचते हैं। तो सोचो 365 दिन में केवल 7 दिन मुझे भगवान के करीब बैठने का, भगवान के घर के पवित्र वाइब्रेशन अपने में भरने का, भगवान के बच्चों की स्नेह भरी दृष्टि पाने का, भगवान के घर का ब्रह्मा भोजन पान करने का अवसर मिले, और उन्हीं 7 दिनों में से भी 2-4 दिन मेरे व्यर्थ में चले जाएं। बाबा तो कहते एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है, हर घड़ी अनमोल है। समय मिलता है, बाबा के कितने सारे स्थान है, हर जगह तपस्या का वातावरण है, वहां बैठ जाइए, बातें नहीं कीजिए, जहां भी बैठो शांति से अनुभव करो, तपस्या में बैठो, हर जगह पे एक विशेष संकल्प करो कि इस सेवा के बहाने मुझे परमात्मा सानिध्य मिला तो मैंने कितना लाभ लिया, मैं इस मधुबन यज्ञ भूमि से क्या परिवर्तन करके जाऊंगा या जाऊंगी, क्या नयापन इस बार मैं सीख कर जाऊंगी, इस बार मैं क्या प्रेरणा लेकर जाऊंगी जो मैं मुझे भी लगे अन्य को भी लगे कि ये परिवर्तन भूमि से आए हैं। संकल्प करेंगे ना सभी, तो इसलिए कहते हैं इस ज्ञान गंगा में अच्छी तरह से अपने आप को चमका लें, जो भी कोई कमी कमजोरी भी है। बाबा सेवा के अंदर हड्डियां लगाने वाले को कहते हैं बच्चे, जो चुल पर सो दिल पर, जो सेवा में है ना पूरा दिल लगाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन वही बच्चे बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। तो ये भाग्य का अवसर, भाग्य बनाने की बेला, सभी को बहुत मुबारक हो। आप आए हैं और अपनी ऐसी यादगार जर्नी बना लें और जाकर के आपका अनुभव, आपका चेहरा, आपकी चलन, आपका स्थिति देखकर दूसरे भी कहे कि मैं क्यों नहीं गया, मैं कैसे पीछे रह गया। तो ऐसी बाबा कहते हैं बाप समान अपने आप को बनाते जाना यहां से। तो ऐसी मधुबन वरदान भूमि पर परम भाग्यशाली आत्माओं को फिर से इस बाबा मिलन की, शिव जयंती के मौके पर हमको सेवा मिली, बाबा का बर्थडे हम सब मिलके मनाएंगे, अपना भी बर्थडे मनाएंगे, ऐसे टाइम पर हमको सेवा मिली तो क्या करेंगे, एक बार हाथ ऊपर करना, थोड़ा सा पीछे करना और अपनी पीठ थपथपाना। वाह रे मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं जो मुझे बाबा ने सेवा के लिए सिलेक्ट किया और यहां बुलाया है। वाह बाबा वाह, थैंक यू। हमारे बीच में भाई साहब भी आ गए हैं, प्यारे बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।